नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ अजय मसंत। अजय जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार शशांक जी।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला जारी। चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले को जीतकर न्यूजीलैंड ने खाता खोला। एरिना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के वुमेन सिंगल्स फाइनल में प्रवेश किया। खिताबी मुकाबला एलिना रिबाकिना से होगा। और टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में डी गुकेश ने याकिज खान पर जीत दर्ज की। सीधे चलते हैं वडोदरा, जहां महिला प्रीमियर लीग का मुकाबला जारी है। वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यूपी वॉरियर्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक यूपी वॉरियर्स ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में बेंगलुरु पहले, वहीं यूपी पांचवें स्थान पर है। अच्छा स्टार्ट मिला था यूपी को, मैक लैनिंग ने अच्छी शुरुआत दी, 30 गेंद पर 41 बनाए, लेकिन अब टीम रास्ता भटक गई।
देखिए, ये पूरा सिलसिला, पूरा सीजन है WPL का यूपी वॉरियर्स के लिए ऐसा ही रहा है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। मतलब एक तो कलेक्टिव फेलियर होता है, जैसे बैटिंग बॉलिंग, जैसे आपने बताया कि शुरुआत बहुत अच्छी की मैक लैनिंग ने, लेकिन उसके बाद फिर जल्दी विकेट चटक गए।
जी,
तो देखिए, जहां भी कंसिस्टेंसी होती है वहीं पे पॉइंट्स आते हैं, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिखाया कि जो उनके जो पहले 5 मैचेस जो उन्होंने जीते, सबसे बढ़िया बढ़िया टीम मुंबई इंडियंस, 2-टाइम चैंपियंस को भी हराया उन्होंने उसी दौरान, और 10 पॉइंट अर्जित किए, तो डेफिनेटली उनके पास मोमेंटम था। और मेरे ख्याल से उन्होंने प्लेऑफ्स में जगह बना भी ली है स्मृति मंधाना की टीम ने। लेकिन अभी जो दो उनको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स लास्ट दो गेम्स में हुई हैं, जिसमें उन्होंने एक मैच दिल्ली कैपिटल्स के साथ वो हारे, बड़ा ही क्लोज मैच, उसके बाद मुंबई इंडियंस ने भी उनको 15 रन से हराया। तो ये दो मैच जो हारे हैं, इसके चलते जहां कि ये बहुत पहले ही अपनी फाइनल्स में जगह बना लेते, अभी तक प्लेऑफ्स पे ही अटके हुए हैं। लेकिन अगर आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यूपी वॉरियर्स को हरा देते हैं तो इनको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, जिससे इनकी जो टोटल 12 पॉइंट्स हो जाएंगे, और ये डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे आपका WPL
प्लेऑफ
फाइनल्स में चले जाएंगे, एज अ टॉप मोस्ट टीम, तो वो फाइनल में चले जाएंगे। प्लेऑफ्स के लिए फिर अलग दूसरी टीम्स जो है कंपीट करेंगी। यूपी वॉरियर्स के साथ ये है कि इनके पास सिर्फ 4 पॉइंट हैं अभी तक, और लेकिन इनके पास एक बात ये है कि इनके पास 2 मैचेस खेलने, बाकी और सब टीम्स को जो है 3 टीम्स को जो है एक एक मैच खेलना है। यूपी वॉरियर्स को 2 मैचेस खेलने हैं, तो 2 मैचेस मतलब 4 से ये मैक्सिमम, अगर दोनों मैचेस जीतते हैं अगले, तो ये आज और अगला जो मैच होगा तो इनके 8 पॉइंट हो जाएंगे
जी।
लेकिन इसके साथ इनका जो नेगेटिव रन रेट है वो भी कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है, और इनकी प्रोग्रेस रोक सकता है। बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं यूपी वॉरियर्स को प्लेऑफ्स तक पहुंचने के लिए, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। अगर बहुत अच्छे ये ज़्यादा विकेट से जीते हैं या एक अच्छे मार्जिन से जीते हैं, तो डेफिनेटली ये दे कैन थिंक ऑफ होप ऑफ एंटरिंग द प्लेऑफ्स, बट अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है जिस हिसाब से इन्होंने विकेट्स लूज किए हैं। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बहुत प्रोफेशनल टीम है और जीत भी सकती है ये मैच।
जी, हालांकि इस बार एलिस पेरी इस टीम में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
देखिए, स्मृति मंधाना टीम की कैप्टन है, इंडिया टीम की वाइस कैप्टन है, और जो भी वर्ल्ड कप जीते हैं उसकी भी वाइस कैप्टन थी इंडियन वर्ल्ड कप विनिंग टीम की, तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस है। बहुत सारे इनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, और जिस हिसाब से इन्होंने, आपने देखिए, कंसिस्टेंसी दिखाई, पहले 5 मैचेस में धड़ाधड़ 2-2-2-2 5 पॉइंट, 2-2 पॉइंट जीत के इन्होंने 10 पॉइंट अर्जित किए, उसी का ही जो है ये आज जो है इनको एडवांटेज मिला हुआ है, और आज जीतते हैं तो डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाएंगे
जी। और उधर चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में कल न्यूजीलैंड ने भारत को 50 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 215 रन बनाए। 216 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 8 गेंद शेष रहते 165 रन पर सिमट गई। शिवम दुबे ने 23 गेंद पर सर्वाधिक 65 रन की पारी खेली, वहीं टीम साइफर्ट ने 62 रन बनाए। साइफर्ट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक्सपेरिमेंटेशन का दौर जारी है
कल जी, काफी सारी एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। देखिए कल के मैच में हार्दिक पांड्या जो सबसे अच्छे दुनिया के वर्ल्ड नंबर वन ऑलराउंडर माने जाते हैं उन्होंने बॉलिंग नहीं करी और शिवम दुबे ने भी बॉलिंग नहीं करी। ईशान किशन फॉर रीजंस बेस्ट नोन टीम में शामिल नहीं हुए। अर्शदीप टीम में आए और उसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस हुए जिसके चलते मतलब जो इंडिया की और ऑफकोर्स जो संजू सैमसन है जिनका जो परफॉर्मेंस है ये चारों मैच इन्होंने खेले लेकिन इनमें किसी भी मैच में इनका परफॉर्मेंस नहीं आया एज अ बैटर। चारों मैच में बहुत बिलो पार, जब हम जहां सोच रहे थे कि ये पोटेंशियल हैं जो T20 वर्ल्ड कप के लिए खेलने के लिए, मुझे लग नहीं रहा कि इतना वीक परफॉर्मेंस दे के वो आ पाएंगे टीम में जगह बना पाएंगे। तो फिर बदल होगा लेकिन बहुत सारे क्योंकि मैंने आपको बताया ना एक्सपेरिमेंट कर रही है टीम तो यही देखना मेरे ख्याल मुझे तो यही लग रहा है देखना चाह रहे होंगे कि हम बुरे से बुरे अगर सिचुएशन में भी हालातों में भी हम कैसे उभर के आ सकते हैं। लेकिन कल ऐसा हुआ नहीं, न्यूजीलैंड की टीम काफी मोटिवेटेड थी और कहीं ना कहीं एक इंडिया की टीम में कॉम्प्लेसेंसी भी आ गई होगी क्योंकि पहले तीन मैच वो जीत चुके हैं, श्रृंखला पे उन्होंने 3-0 की अनअसेलेबल लीड ले ली है तो आखिरी के दो मैच बचे हैं तो उन्होंने यही सोचा है कि चलिए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कहीं कुछ इसमें से एक एडवांटेज या कहीं कोई ऐसा प्लेयर निकल के आ जाए, कोई ऐसा परफॉर्मेंस निकल के आ जाए जिसको हम उनको वर्ल्ड कप में रेप्लिकेट कर सकें। तो वैसा कुछ निकल के आया नहीं। ऑफ कोर्स शिवम दुबे जो हैं उन्होंने जो है 65 रन बनाए 23 गेंद में, बहुत ही तेज पारी खेली और ईश सोदी को जिस हिसाब से उन्होंने मारा एक ओवर में शायद 29 रन बना लिए तो डेफिनेटली पिंच हिटर हैं और स्पिनर्स के खिलाफ स्पेशली बहुत ही अच्छा करते हैं। तो उनका जो है मेन मकसद ही टीम में यह है कि स्पिनर्स को बहुत अच्छे से खेल पाए और उन्होंने कल करके दिखाया। ऑल्दो उनकी जो पारी है 65 रन की वो इंडिया को फिर भी नहीं ले जा पाई विक्ट्री के लिए तक और 50 रन से इंडिया हार गई।
उधर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा 6 बल्लेबाजों के साथ उतरना सोचा समझा फैसला था।
We purposely played 6 batters today. We wanted to have 5 perfect bowlers and wanted to challenge ourselves. Like for example, if we're chasing 200 or 180 and we wanted to see if we're 2 down or 3 down, how does it look? But then it's fine at the end of the day. And we wanted to play all the players who are part of the World Cup squad. Otherwise, we would have played other ones.
कप्तान ने कहा कि विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर हम जानबूझकर मुकाबले में चेस करना चाहते थे।
जी we've been batting really well when we've batted first so I wanted the guys to take that responsibility if we're chasing 180 or 200 and 2 wickets or 3 wickets are down and see how we bat so it's a good challenge hopefully if we get an opportunity again in the next game we might chase again but at the end of the day good learning।
5 मैचों की श्रृंखला में भारत 3-1 से आगे है। पांचवां और अंतिम मुकाबला 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। हालांकि इस श्रृंखला में कप्तान सूर्य कुमार यादव की अच्छी वापसी हुई, अच्छा प्रदर्शन किया तीनों मैच में। कल भी जो स्ट्रेट जो शॉट खेल रहे थे डाउन द ग्राउंड, अच्छा बैट के बीच से
हाँ लेकिन ठीक है हो जाता है, मतलब ऐसे परफॉर्मेंस हो जाते हैं जहां पे एक बैटर जो है कोई स्ट्रोक खेलना चाहता है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है या बॉल कहीं कट के अंदर आ जाती है तो 8 रन पे डेफिनेटली आउट हुए। लेकिन मेजर डिसअपॉइंटमेंट मैंने आपको जैसे बताया ना, एक तो संजू सैमसन का था, उसके बाद एक उछाल नहीं मिल पाया इंडिया को। अभिषेक शर्मा जो हैं सिर्फ शून्य पर आउट हो गए। उसके अलावा हार्दिक पांड्या जो अभी तक इतना अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं वो चले नहीं, बॉलिंग भी उन्होंने नहीं की। तो कोई सोची समझी एक स्ट्रेटेजी होगी कि इस मैच में हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है, हमें जीत की तरफ नहीं देखना। तो यही मुझे ऐसा लग रहा है, यही मुझे झलक इस मैच में दिखी कि हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि आगे हम वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। मेरे ख्याल से इस मैच का मकसद यही था और अगले मैच का भी मकसद मुझे लग रहा ऐसा ही होगा।
जी चर्चा करते हैं शतरंज पर। टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने यागिज खान अर्दुगुम्स के खिलाफ जीत हासिल करके प्रतियोगिता में वापसी की। उनके अब संभावित 10 में से 5 अंक हो गए हैं। वहीं भारत के शीर्ष रैंकिंग के खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी को जर्मनी के विंसेंट कीमर से हार का सामना करना पड़ा। उधर भारतीय ग्रैंड मास्टर और महिला विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख इस साल नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट में अपना पदार्पण करने के लिए तैयार है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 25 मई से 5 जून तक ओस्लो में होगा। पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है दिव्या देशमुख।
जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इंडियंस जो हैं पहले भी पार्टिसिपेट करते आए हैं, विश्वनाथन आनंद ने कई बार इसमें पार्टिसिपेट किया है, उसके बाद पिछली बार भी गुकेश और अर्जुन एरिग इस टूर्नामेंट में खेले थे। विमेन्स टीम अगर बात करें तो उसमें कुनीरू हम्पी जो टू टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, रैपिड चैंपियन है वो, उसके अलावा आर वैशाली वो भी ग्रैंड मास्टर है इंडिया की, वो भी इस नॉर्वे चेस में खेली थी। तो ओवरऑल जो है नॉर्वे चेस में इंडिया का परफॉर्मेंस, मतलब कोई टाइटल आज तक नहीं जीता है
जी,
लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा ही आया। और मैग्नस कार्लसन जैसे प्लेयर्स को भी जो है, और फेबियानो कारुआना जैसे प्लेयर्स को भी इन हमारे इंडियन प्लेयर्स ने हराया है डेफिनेटली। तो डेफिनेटली दिव्या देशमुख यंग है, 19 साल की हैं, और वर्ल्ड कप विमेंस वर्ल्ड कप टाइटल खिताब जीता था आपने याद करिए, बैटूमी में जीता था जॉर्जिया में पिछले साल, जिसके चलते वो विमेंस कैंडिडेट्स के लिए भी क्वालिफाई करी थी और ग्रैंड मास्टर भी बन गई थी। शी बिकेम द फोर्थ ग्रैंड मास्टर, अ वुमन हु बिकेम अ फोर्थ ग्रैंड मास्टर, उन्होंने ग्रैंड मास्टर टाइटल भी अर्जित करी थी उसी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो डेफिनेटली अपकमिंग प्लेयर हैं, गुकेश भी 19 साल के हैं, दिव्या देशमुख भी 19 साल के हैं, और दो एक वर्ल्ड चैंपियन है और ये वर्ल्ड विमेंस वर्ल्ड कप विनर है, तो डेफिनेटली द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। और नॉर्वे चेस की बात करें तो नॉर्वे चेस भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यंगस्टर्स को बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब परफॉर्मर्स को, यंगस्टर्स मीन्स परफॉर्मर्स को अपॉर्चुनिटी देता है टू एक्सेल एंड गिव अ गुड प्राइज मनी। तो इसके चलते इन्होंने दिव्या देशमुख को भी बुलाया, और प्रज्ञा नंदा जो हैं जो ओपन कैटेगरी में खेलेंगे नॉर्वे चेस में इसी साल, वो भी शामिल हैं। तो अभी मेरे ख्याल से तीन ओपन सेक्शन में और तीन विमेन सेक्शन में जो है प्लेयर्स को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, इन्वाइट किया है। अभी क्योंकि ये 6-6 प्लेयर का टूर्नामेंट है, तो अभी तीन प्लेयर और नॉर्वे चेस विमेन में और तीन प्लेयर ओपन सेक्शन में और इनवाइट करेगा। हो सकता है कुछ और इंडियंस भी हों वो इस टूर्नामेंट में आ जाएं इन द कमिंग फ्यू डेज, तो इंडिया की जो है एक 4 या 5 प्लेयर भी आने की उम्मीद है। अभी सिर्फ 2 हैं और भी बढ़ सकते हैं इसमें
जी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के वेमन सिंगल सेमीफाइनल में एरिना सबालेंका ने यूक्रेन की एलिना स्वेतलोना के खिलाफ 6-2, 6-3 से सीधे सेटों में जीत दर्ज की। सबालेंका शनिवार को मेलबर्न में खिताब के लिए एलेना रिबाकिना से भिड़ेंगी। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
रोड लेवर एरिना में खेले गए मुकाबले में आज एरिना सबालेंका ने शुरू से ही मैच में पकड़ बनाए रखी। उन्होंने फाइनल में जगह बनाने के लिए करीब 1 घंटे का समय लगा। ये मुकाबला एक तरफा रहा जिसमें सबालेंका ने अपनी पहली सर्विस पर 67% और दूसरी सर्विस पर 79% अंक जीते। बेलारूस की खिलाड़ी एरिना सबालेंका ने अपनी पावर और जोरदार सर्विस के साथ स्वेतलोना पर लगातार दबाव बनाए रखा। इस बीच अपने तीसरे ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब की ओर बढ़ रही स्वेतलोना को वापसी का एक भी मौका नहीं मिला। स्वेतलोना सबालेंका की गति और निरंतरता का मुकाबला करने में जूझती रही। यूक्रेन की खिलाड़ी ने अपनी पहली सर्विस पर सिर्फ 56% और दूसरी पर 50% अंक जीते। उन्होंने मैच के दौरान 3 डबल फॉल्ट भी किए। टॉप सीट खिलाड़ी ने अपने 7 ब्रेक पॉइंट्स मौकों में से 4 को भुनाया, जबकि स्वेतलोना को 4 मौकों में से सिर्फ 1 ब्रेक लेने दिया। सबालेंका ने कुल अंकों के मामले में भी अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ा। 2 बार की चैंपियन ने 65 अंक जीते, जबकि स्वेतलोना ने 46 अंक अपने नाम किए। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
4th ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल है सबालेंका का, और राय बकीना ने भी अक्टूबर से 19 में से 18 मुकाबले जीते हैं।
जी हाँ डेफिनेटली, रिबकीना जो है वो 2022 में विंबलडन चैंपियन भी रही थी, और सबालेंका तो 4 मेजर्स जीत चुकी हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन उनका फेवरेट हंटिंग ग्राउंड है। 2023 और 2024 में इन्होंने ये खिताब जीता था, 25 में नहीं जीत पाई थी, 26 में हो सकता है वापसी हो, और फाइनल में पहुंच चुकी हैं। बहुत टक्कर का मुकाबला होगा, एक विंबलडन चैंपियन रहा है और एक 2-टाइम ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन है, 2-टाइम यूएस ओपन चैंपियन भी हैं सबालेंका। तो डेफिनेटली चोटी की टक्कर होगी, लेकिन मैं कहूंगा कि सबालेंका का जो पावर गेम है वो इनको जो है खिताब की तरफ, तीसरे ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब की तरफ ले जाएगा।
उधर एफआईएच हॉकी मेंस प्रो लीग का आगामी चरण 10 से 15 फरवरी तक राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। लीग के मद्देनजर हॉकी इंडिया ने सीनियर मेंस नेशनल कैंप के लिए 33 सदस्यों वाले संभावित कोर ग्रुप की घोषणा कर दी है। संक्षिप्त में जाना चाहेंगे, किशन बहादुर पाठक को इस टीम में ऐड नहीं किया।
जी हाँ, किशन बहादुर पाठक को ऐड नहीं किया, क्योंकि प्रिंसदीप सिंह एक प्लेयर है जो एशियन चैंपियनशिप जो हुई थी, एशियन जूनियर चैंपियनशिप हुई थी, उसमें वो उभर के आए थे अच्छे गोलकीपर के रूप में, तो उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है। मेन डिसअपॉइंटमेंट ये है कि मनप्रीत सिंह को नहीं रखा है, जो दो ओलंपिक मेडलिस्ट मेडल जीत चुके हैं और फॉर्मर कैप्टन है, वो एक डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन आई सपोज वो उसको ओवरकम करेंगे और इसमें अच्छा प्रदर्शन देंगे. पिछली बार इनकी जो है 8th पोजीशन आई थी, होपफुली दे विल डू वेल दिस टाइम.
बिल्कुल. और श्रोताओं, अब समय हो चला आपसे विदा लेने का. अजय जी आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद.
धन्यवाद.
और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए. नमस्कार.